ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் வைதிக் சாந்தி மந்த்ரா பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஹரிஹரானந்த சாகர்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
கிசிக்கோ ஸ்ரேஷ்ட கோஷித் கரனா ஹை தோ சாத் சாத் மே பிரதியோகி பி சாஹியே, और वो भी सजातीय प्रतियोगी। जैसे अभी ये जो मैराथन चल रही है उसमें नंबर किसी का दिया जाएगा, जो पहले खास दौड़ने वाले होंगे उनमें से जो पहला आएगा उसको प्रथम नंबर दिया जाएगा। तो वो जो है सब बराबर के होते हैं, उसमें जो श्रेष्ठ आता है तो उसको कहा जाता है कि ये पांचों में ये श्रेष्ठ है। जैसे क्लास में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी है वो एक ही क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच में प्रतियोगिता होती है, तो उसमें से जो आगे आता है उनको श्रेष्ठ कहते हैं। वृक्षों में पर्वत श्रेष्ठ है ऐसा नहीं कहते, स्थावराणाम हिमालय है ऐसा भगवान ने कहा। जो स्थावर है पर्वत है उसमें जो श्रेष्ठ हिमालय भगवान का वो मैं हूं, और वृक्षों में जो उत्तम है उसको कहा जाता है कि ये सभी वृक्षों में ये उत्तम है। वैसे जो मनुष्य का समूह होता है उस मनुष्य के समूह में कहा जाता है कि मनुष्य के समूह में ये व्यक्ति श्रेष्ठ है। वैसे ही यहां पर भी जो छंदों में श्रेष्ठ है कहा, यह छंदसाम ऋषभ, छंदों के मध्य में ये जो ओमकार है वो श्रेष्ठ है। देखे छंद से अभिप्राय है यहां पर गायत्री आदि छंद, खास करके वेद में सात छंद का उल्लेख है, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। ठीक है कि नहीं? गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति, ऐसे सात छंद है। और इन छंदों में जो है चार चार मात्रा का भेद रहता है। जैसे गायत्री है, गायत्री छंद को आप ले लीजिए, वह 24 वर्ण का होता है गायत्री मंत्र, आप गिन सकते, आधा नहीं, आधा वर्ण नहीं गिना जाएगा, जो पूर्ण है वही गिना जाएगा। यानी कि अकार आदि जो है व्यंजन स्वर जिसको कहते हैं, उस स्वर से युक्त जो व्यंजन है वर्ण तभी ही पूरा होता है। हलंत वर्ण है वो आधा होता है और वो अजंत से पूर्ण होता है, अच वर्ण से पूर्ण होता है। जो हल वर्ण होता है वो अच वर्ण से पूर्ण होता है। हल वर्ण समझ में आया? जैसे हय वरल यमगण जबगड़द जबगड़द खप छट छट कप शश सह, ये सब हल वर्ण है। और अऊ रिलरी ए ओ ऐ औ ये अच वर्ण है। तो देखिए आपको हकार का उच्चारण करना है तो साथ साथ में अकार होना चाहिए, नहीं तो आप उनका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। हकार बोलते हैं, यकार बोलते हैं, ह बोलते हैं, य बोलते हैं, तब साथ साथ में अंदर अकार छिपा हुआ रहता है, ठीक है कि नहीं। इसलिए जब हम छंद की गिनती करेंगे तब इसी क्रम से करेंगे। तो ऐसे ही गायत्री मंत्र में 24 वर्ण होते हैं, और ऐसे चार चार बढ़ाते जाइए तो ये छंद भेद होता चला जाएगा। 28 वर्णों का ये जो उष्णिक छंद और 32 वर्णों का अनुष्टुप छंद होता है। देखिए अनुष्टुप छंद के अंदर 32 वर्ण रहते हैं, और दो अर्ध रहते हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, और चरण की दृष्टि से कहे तो चार होते हैं। आठ आठ वर्णों का एक चरण होता है। देखिए गीता के अधिकतर श्लोक वो अनुष्टुप कोटि के हैं, और यदि कम ज्यादा हो जाएगा ना तो बोलने में पता चल जाएगा, यदि गलत उच्चारण हो जाता है ना तब भी पता चल जाता है। एक वर्ण कम बोलेंगे तब भी छंदोभंग हो जाता है। ये जो श्लोक है उसमें संगीत छिपा हुआ है। आजकल का जो ये जो संगीत है उस संगीत के अंदर कोई नियम नहीं है जो आधुनिक है, और हमारा जो वैदिक छंद है उसके अंदर बिल्कुल निश्चित मात्रा में सब चलता है। यदि श्लोक के अंदर एक वर्ण भी आपने कम बोल दिया तो सुनने वाले को पता चल जाता है, जो जानता है उनको, नहीं तो नहीं। नहीं तो हम श्लोक बोलते हैं अष्टम पष्टम बोल देते, किसी को पता भी नहीं चलता है। इसलिए अनुष्टुप जैसे 32 का, वैसे ही आप चार 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 बढ़ाते चले जाएंगे तो ये छंदों के अंदर भेद का पता चल जाता है। तो इसलिए यहां पर ओमकार से प्रार्थना करनी है तो कहा गया कि जो छंदसाम ऋषभ, गायत्री आदि जो छंद है उनके मध्य में जो ऋषभ है यानी कि श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि ये जो ओमकार है वो परमात्मा का प्रिय नाम है। यदि परमात्मा को आप बुलाना चाहते हैं तो ओम की ध्वनि करेंगे ना तो वो उपस्थित हो जाएंगे तुरंत। जैसे भी यहां लोग बैठे हुए उसमें किसी का नामोच्चारण कोई आकर के करे देवदत्त ऐसा बोलेंगे तो जो जानता है कि मेरा नाम देवदत्त है तो वो तुरंत उठ खड़ा होगा और कहेंगे विवाह क्या बात है। तो ठीक है कि नहीं, कि उनको पता है कि देवदत्त वो मेरा नाम है इसलिए मेरे को बुला रहे। तो वैसे ही जो ओम है वो परमात्मा का प्रिय नाम है। देखो लोक में व्यवहार में भी ऐसा देखा जाता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते तो उनका जो मूल नाम है वो भुला दिया जाता है और उनका उपनाम जो है वो इतना प्रसिद्ध हो जाता है कि लोग उनको उपनाम से ही जानते हैं। जैसे गांधी जी है तो जो गांधी है वो उनका सरनेम है, लेकिन वो समग्र विश्व में वो गांधी जी के नाम से ही प्रसिद्ध है। गांधी जी कहेंगे तो तुरंत उनकी व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित हो जाएगी। अब उनका जो मूल नाम है वो मोहनदास है, तो वो जो है कम लोग जानते, उनकी प्रसिद्धि भी कम है। अभी ओमकार है वो तो परमात्मा का मूल नाम है। जैसे समझ लो कि आप लोग की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, कोई चीज ले रहे या फ्लैट ही ले रहे तो रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा? तो उसमें आप अपना जो पहले से जो नाम है, मूल नाम, जो नामकरण संस्कार के समय जो नाम रखा गया वही लिखेंगे कि कर्म से जो उत्पन्न हुआ वो नाम लिखेंगे? बताइए। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति का नाम जो है कर्म से भी पड़ जाता है। कोई व्यक्ति ऐसा कर्म करता है तो कर्मनिष्ठ प्रसिद्धि हो जाती है। सूरत में जाएंगे तो प्राय खास करके वहां ऐसा है, जो डालडा घी का बिजनेस करता है तो वो डालडा वाला हो जाता है। ऐसा होता है ना, उसी नाम से प्रसिद्ध हो जाता है फिर। और हीरा का बिजनेस कर जाता है तो हीरा वाला हो जाता है, और जीरा का धंधा करता है तो जीरा वाला। ऐसा होता है कि नहीं? वैसे ये नाम उपनाम हो जाता है, किंतु जब रजिस्ट्रेशन करवाना होता है तो जो मूल नाम है वही लिखा जाता है। तो वैसे ही परमात्मा के न जाने कितने नाम है, कितने रूप है, किंतु उनका मूल नाम है यही ओम है। सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम में आप पाते हैं कि भगवान के 1000 नाम है। अब वो सब नाम जो है गौण है। कैसा है गौण? समझ में आए? गौण यानी गुणकृत नाम। भगवान के अंदर ये सब गुण है, इसलिए वो गुण को देखते हुए वो नाम है उसमें सब। किंतु ये जो है प्रधान नाम है। एक नाम होता है प्रधान और नाम होते हैं सब गौण। गुणकृत नाम होंगे उसको कहेंगे गौण, उसके अंदर ऐसे गुण है और ये प्रधान है। ओमकार इसलिए कहा कि ये श्रेष्ठ है, और ये केवल है इतना ही नहीं, सिद्धि भी है। आप कठोपनिषद में देखे, वहां पर यमराजा कहते नचिकेता को, एतद आलंबनम श्रेष्ठम, एतद आलंबनम परम, एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। देखो, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कहीं एक आलंबन है। आलंबन समझ में आए? आलंबन कहते हैं आश्रय। जैसे कोई व्यक्ति पंगु है तो चलने के लिए क्या रखता है? लकड़ी रखता है। तो लकड़ी क्या है? उनका आलंबन है, आधार है। तो वैसे ही परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो आलंबन है, जो साधन है, वो जितने साधन है उन सबको एक जगह रखा जाए तो उन सब में जो श्रेष्ठतम है वो ओमकार का आलंबन है। प्रणवो धनु शरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वतन्मयो भवेत। कहीं एक उपासना का उल्लेख उपनिषदों में है, सभी उपासनाओं में ओमकार की उपासना श्रेष्ठ है। ओमकार से आप परमात्मा को तुरंत नजदीक पाते हैं। इसलिए वहां पर भाष्यकार ने कहा जितने भी गायत्री आदि आलंबन है उन सभी आलंबनों में ये ओंकार श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? इसलिए कि वो विश्व रूप है। देखो इसमें कारण विश्व रूप है। ओंकार कैसा है? विश्व रूप। और सब आलंबन है वो विश्व रूप नहीं है, ये केवल ओंकार ही विश्व रूप है। यानी विश्व ही जिसका रूप है। देखिए ओंकार वो केवल लिपि मात्र मत समझिए, इसको लिपि में भेद भी हो सकता है। देखिए हम लोग जैसे ओंकार की लिपि लिखते हैं वैसे कुछ ऐसे संगठन है वो कुछ भिन्न प्रकार से भी लिखते हैं। ओकार करके फिर तीन लिखते हैं, फिर मकार हलंत लिखते हैं, ऐसा भी तो उसमें भेद है। ओंकार वो लिपि मात्र नहीं है, ये जो विश्व है वो ओंकार है। ये विश्व कैसे ओंकार है उसको मांडुक के उपनिषद में बखूबी बताया गया है। सर्व जगदात्मक है वो, क्योंकि देखिए उनकी जो तीन मात्राएं हैं, एक मात्रा अप्रगट है, तीन मात्रा में जो प्रथम मात्रा है अकार। देखिए इसमें सारा जगत आ जाता है। प्रथम अवयव जो अकार है उसी अकार के अंदर सभी वाणी का अंतर्भाव हो जाता है। अकार के अंदर सर्व वाच्या नाम अंतर्भावात, जितने भी वाच्य पदार्थ है वो सब शब्द से ही वाच्य है और सभी शब्दों का अंतर्भाव अकार के अंदर है। श्रुति भी है अकारो वै सर्वा वाक्, अकार ही सभी वाणी का मूल है। देखिए बच्चा जब सबसे पहले यदि कोई वर्ण का उच्चारण करता है तो वो कौन है? अकार है, वो अकार बोलते हैं, क्योंकि अकार का स्थान कंठ है। कंठ में से जब वायु का अभिव्यंजन होता है तो सबसे पहले अकार का उच्चारण होता है और उसके बाद जब वो जो वायु है कंठ से जब आगे बढ़ करके तालु आदि स्थान प्रयत्न के साथ उनकी टक्कर होती है तभी वो ऊ रिलरी ए ओ ऐ वो हैवरल यमगण इत्यादि रूप से उनका आविष्कार होता है। ये संस्कृत वाङ्मयी बड़ी दिव्य है संस्कृत भाषा। कौन वर्ण के स्थान क्या है, प्रयत्न क्या है, वो सब हमारे यहां बताया गया। गले से तो केवल वायु का अभिव्यंजन होता है, मध्यमा वाणी है वो गले तक है, फिर गले से आगे तालु आदि स्थान प्रयत्न के साथ टक्कर लेने से वो वेखरी वाणी का स्वरूप बन जाता है। चार वाणी है ना, परा पश्यंती मध्यमा और वेखरी। तो देखिए वही अकार, अकार का जो स्थान है वो कंठ है। देखिए क ख ग ग ङ, अब उसका उच्चारण करेंगे ना तो वो कंठ से निकलेगा। उन सब का स्थान है कंठ है। च च ज ज ञ बोलेंगे तो देखिए उसका जो है वो तालु से जब वो जीभ टक्कर लेगी तब च छ ज ञ बोला जाएगा। टठ डढ़ ण, ये जो पांच वर्ण है, जब अपनी जो जीभ है वो मुर्दा से टक्कर लेती है तभी आप ट ठ ड ढ ण का उच्चारण कर पाते हैं। थोड़ा जो है देखियो, जब ट ठ ड ढ ण आप बोलते हैं ना, तब जीभ एक ही जगह टक्कर लेती है, ट ठ ड ढ ण। और त थ द ध न है, त थ द ध और न, उसका स्थान क्या है? दंत। देखो जब अपनी जो जीभ है वो दांत के साथ जब टक्कर लेती है तभी ये बोल पाते। आप जीभ को दांत के साथ टक्कर न लेने दे और बोलिए तो नहीं बोल पाएंगे। प फ ब भ म, देखिए जब दो ओष्ठ भिड़ते हैं तभी ये पांचों वर्ण आप बोल सकते, अन्यथा नहीं बोल सकते। तो अंदर से जो वायु निकलती है वो बाहर निकलते सब जो है वोट बंद हो जाए तभी ये हो सकता है। जैसे आप मुरली में, मुरली बजाने वाले को आप देखियो, वो मुख से तो केवल उसके अंदर प्राण भरते हैं, हवा ही भरते हैं, किंतु वो हवा जो वो जो अंदर से खाली भाग है उसमें जाता है और उसके रंध्र के ऊपर जब अंगुलियां दबाते हैं उसी के अनुसार सुर बदल जाते हैं। वैसे ही वायु का जो है कंठ से अभिव्यंग्यम तो आकार रूप से होता है, किंतु ये मुर्दा है, दंत है, ओष्ठ है, कंठ है, ये सब स्थान है कि नहीं? स्थान के साथ जब वो प्रक्रिया होती है तब वो अलग अलग वर्ण का रूप वो वायु धारण कर लेता है। और वर्ण का जो समूह होता है वही जो है पद बन जाता है, और पद का समूह है वो वाक्य बन जाता है, और वाक्योच्चारण से ही सारे संसार का व्यवहार हो जाता है, अन्यथा व्यवहार नहीं होगा। पहले आप घ बोले, फिर दो पांच सेकंड के बाद ट बोलेंगे तो घट का बोध नहीं होगा। घकार और अटकार दोनों पास में हो तो घट ऐसा पद बन जाता है। तो पद के अंदर जो घकार और अटकार दो वर्ण अंदर बैठे हुए, फिर जो है घटम आनय ऐसा कहा तो वाक्य बन गए। घट ले आओ तो घट, और आने यानी कि ले आओ, ऐसे दो पद एक साथ में जो है पढ़े गए तो पदों का जो समूह है वो वाक्य बन गया, और वाक्य का उच्चारण जैसे किया तो जो है जिसको आदेश किया गया, कई लोग बैठे हुए थे उसमें से जिसको आदेश किया गया कि घटम आनय, उत्तम वृद्ध ने वो आज्ञा दी तो वो जो है वो उठ करके घड़ा ले आता है, लो क्या करना है, पानी पियो, तो व्यवहार होता है। तो ये सारा जो संसार का व्यवहार है वो वांगमूलक है, और जो वांग है वो आकार मूलक है, इसलिए ये जो है ओंकार सर्वात्मक है, विश्व रूप है, सर्व जगदात्मक है, क्योंकि प्रणव का जो प्रथम अवयव आकार है उसी के अंदर सभी वाणी का अंतर्भाव होने से, और अकारो वे सर्वावाक इस श्रुति से, और जो वाणी है वो वाणी यानी वाचक, और उनका जो वाच्य है, वाच्य और वाचक का जो है संबंध, हमेशा का रहता है, वो संपृक्त संबंध होता है। इसलिए ऐसा जो ओमकार है वो विश्व रूप है, और छंदों में जो ऋषभ है, ऐसे ओमकार से भावना की जाती है कि स में मेधया स्प्रिणोतु, स मने ऐसा जो ओमकार है वो मेरे को मेधया यानी मेधा से स्प्रिणोतु यानी कि संपन्न करे, मेधया स्प्रिणोतु यानी कि प्रज्ञा बल की प्राप्ति करे, मेरे को ऐसी प्रज्ञा प्राप्त हो जिससे कि मैं ये उपनिषद का जो अर्थ है वो अर्थ में स्मरण कर सकूं और अर्थ का हमेशा मेरे को स्मरण रहे। और ओंकार कैसा है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो वो आगे बताया जाएगा, भगवान की कृपा होगी तो आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।